أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين أما بعد پیارے دوستوں السلام علیکم میری اللہ سے یہی دعا ہے कि आप सभी अपने जीवन में सुखी प्रसन्न और स्वस्थ हों। मैं आपके सामने एक बार फिर अहकाम पर आधारित कार्यक्रम को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज हम अपने कार्यक्रम में जिस चीज़ के बारे में बातचीत करेंगे वो है नमाज़े आयात। आयात ये बहुवचन है आयत शब्द का। अगर हम आयत शब्द को अरबी डिक्शनरियों में देखें तो उसका अर्थ होता है निशानी, और आयत इसी का बहुवचन है यानी निशानियां। हम और आप सभी ये जानते हैं कि बहुत सी वो नमाज़ें जो एक मुसलमान पर वाजिब होती हैं उनमें से एक नमाज़ नमाज़े आयत है। ये वो नमाज़ है जो कुछ कारण से एक मुसलमान के ऊपर वाजिब होती है। कभी वो कारण आसमानी होते हैं तो कभी वो ज़मीनी होते हैं, जैसे सूरज ग्रहण, चांद ग्रहण, जलजला, इस प्रकार की चीज़ें। ये वो चीज़ें हैं जो एक मुसलमान पर नमाज़े आयत के वाजिब होने का कारण बनते हैं। अगर हम बयान करना चाहें इस प्रकार कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे ऊपर नमाज़े आयात को वाजिब कर देती हैं, तो उसमें से कुछ चीज़ों को बयान किया जा सकता है। जैसे अगर किसी क्षेत्र में भूकंप आ जाए यानी जलजला आ जाए तो नमाज़े आयात वाजिब होती है। सूर्य ग्रहण हो जाए तो नमाज़े आयात वाजिब हो जाती है। चंद्र ग्रहण हो जाए तो नमाज़े आयात वाजिब हो जाती है। ये वो चीज़ें हैं कि अगर हो जाए तो नमाज़े आयात वाजिब है, भले ही इनके आने से वहाँ के रहने वाले लोग डरें या ना डरें। उसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके साथ नमाज़े आयात वाजिब होती है, लेकिन उनमें एक शर्त ये है कि अगर उनके होने पर वहाँ के अधिकतर लोग डर जाएँ तो नमाज़े आयात वाजिब है। जैसे गरज बरज का होना, लाल पीली या काली आंधी का चलना और इस प्रकार की चीज़ें। अगर इन प्रकार की चीज़ों से उस क्षेत्र के रहने वाले अधिकतर लोग डर जाएं, भयभीत हो जाएं, तो उनके ऊपर नमाज़े आयात वाजिब हो जाती है। अब जब नमाज़े आयात वाजिब हो गई एक व्यक्ति के ऊपर, तो पहला प्रश्न ये उठता है नमाज़े आयात कितनी रकत है और किस प्रकार पढ़ी जाएगी। तो नमाज़े आयात दो रकत है और इस दो रकतों में 10 रुकू हैं। हर रकत में 5-5 करके रुकू हैं, यानी हर रकत में 5 रुकू किए जाएंगे। और इसके पढ़ने का तरीक़ा ये है कि एक मरते अलहम्द पढ़ा जाए, उसके बाद दूसरा सूरा पढ़ा जाए और रुकू किया जाए, फिर अलहम्द पढ़ा जाए, दूसरा सूरा पढ़ा जाए, रुकू किया जाए। इसी तरीके से पहली रकत में 5 बार किया जाए और दूसरी रकत में 5 बार किया जाए। ये वो तरीक़ा है जिससे नमाज़े आयात पढ़ी जाती है, यानी एक मरते अलहम, दूसरा सूरा रुकू, अलहम, दूसरा सूरा रुकू। इस प्रकार जब पहली रकत हो गई यानी 5 रुकू जब हो जाते हैं तो उसके बाद आदमी सजदे में जाएगा, खड़ा होगा, दूसरी रकत पढ़ेगा। इस प्रकार जो है आदमी दूसरी रकत समाप्त करने के बाद तशहुद व सलाम पढ़ेगा, नमाज समाप्त हो जाएगी। एक ये तरीक़ा हुआ नमाज़े आयात पढ़ने का। एक दूसरा भी तरीक़ा है, और दूसरा तरीक़ा ये है कि आदमी पहली रकत में अलहम्द पढ़े और उसके बाद जो दूसरा सूरा जो भी पढ़ना है कुरान का उसको 5 भागों पर बांट दे, हर एक रुकू से पहले एक भाग पढ़े, उसके बाद रुकू में चला जाए। इसी प्रकार 5 रुकू करे, फिर सजदे में जाए, फिर खड़ा हो और दूसरी रकत में भी इसी प्रकार अंजाम दे। तो ये वो तरीक़ा है जिसको हम संक्षिप्त तरीक़ा कह सकते हैं, छोटा तरीक़ा कह सकते हैं, जिससे नमाज़े आयत पढ़ी जा सकती है। तो नमाज़े आयत पढ़ने के दो तरीक़े हुए। पहला ये कि हर रकत में हम्द के बाद पूरा सूरा एक पढ़ा जाए और रुकू किया जाए। दूसरा तरीका ये है कि पहली रकत में हम्द पढ़ा जाए, उसके बाद एक सूरे को 5 भागों में बांटा जाए और उसका एक एक भाग हर रुकू के बाद पढ़ा जाए। तो ये एक तरीका हुआ। अब अगर हम आपके सामने इसका छोटा तरीका बयान करना चाहें तो इस प्रकार होगा। अगर हम मान लिए सूरह कुल पढ़ रहे हैं तो किस प्रकार पढ़ा जाएगा? तो उसका तरीका यह है कि हमने जब पहली रकात हुई, हमने नियत की, नियत करने के बाद अल्हम्द पढ़ा, अल्हम्द पढ़ने के बाद कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और रुकू में चले गए। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली, यहीं पर अभी कोट कर दूँ ताकि बात बहुत दूर ना जाने पाए, कि हमारे बाज़ आयतुल्ला ऐसे हैं वो ये कहते हैं कि जब सूरह को 5 भागों में बांटा जाए तो केवल बिस्मिल्लाह को एक भाग नहीं बनाना चाहिए, बल्कि सूरह का कुछ भाग भी पढ़ा जाए। ये वो कुछ बाज़ आयतुल्लाह हमारे हैं जो ये फरमाते हैं, इसलिए इसमें हमें अपने आयतुल्लाह के फतवे को देखना होगा। तो तरीका ये हुआ, हमने पढ़ा, उसके बाद कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रुकू में चले गए। उसके बाद रुकू से उठे, कहा कुल हुवल्लाहु अहद, रुकू में चले गए। उसके बाद फिर रुकू से उठे, कहा अल्लाहुस्समद, रुकू में चले गए। उसके बाद रुकू से उठे, कहा लम यलिद वलम यूलद, रुकू में चले गए। उसके बाद रुकू से उठे, कहा वलम यकुल्लहु कुफ्फन अहद, उसके बाद रुकू में चले गए। तो ये वो तरीका हुआ जो छोटा तरीका है, हमने आपको बताया अगर कुल हुवल्लाहु अहद को 5 भागों में बांटा जाए तो किस प्रकार पढ़ा जाएगा। ये वो तरीका हुआ जो हमने आपके सामने बयान किया, संक्षिप्त तरीके को इस प्रकार पढ़ सकता है। इसमें यानी पहली रकात में भी इसी प्रकार पढ़ सकता है और दूसरी रकात में भी इसी प्रकार पढ़ सकता है। और इसमें ये चीज़ आवश्यक नहीं है कि अगर हमने पहली रकात में कुल हुवल्लाह को 5 भागों पर बांट के पढ़ा था तो दूसरी रकात में भी कुल हुवल्लाह ही को पढ़ा जाए, नहीं बल्कि किसी दूसरे सूरह को भी हम इस प्रकार पढ़ सकते हैं कि उसको 5 भागों पर बांट के हम उसको नमाज़ आयात में अपने पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो बात आती है दूसरी रकात की है, तो हमने बताया कि पहली रकात जिस प्रकार पढ़ी जाएगी उसी प्रकार दूसरी रकात ही पढ़ी जाएगी। उसके बाद प्रश्न ये उठता है कि हमने ये तो आपके सामने बताया कि किन किन कारणों से नमाज आयात वाजिब होती है। अब ये प्रश्न होता है, जैसे हर नमाज का एक समय होता है, हर नमाज का एक तरीका होता है, तो इसका समय क्या है, नमाज आयात किस समय किस वक्त पढ़ी जाए? तो अगर नमाज आयात सूर्य ग्रहण और चंद ग्रहण के वजह से वाजिब हो रही है, अगर ये कारण बनते हैं नमाज आयात के वाजिब होने की, तो जिस समय सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण आरंभ होता है उसी समय से नमाज आयात का समय आरंभ होगा, और जिस समय ये चंद ग्रहण सूरज ग्रहण समाप्त होना शुरू होता है उसी समय नमाज आयात का समय समाप्त हो जाता है। अब अगर कोई इंसान इस समय में नमाज आयात को नहीं पढ़ सकता पढ़ता है, यानी सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण हुआ था और ये जो पूरा समय हमने आपके सामने बयान किया है इस समय में नमाज आयात नहीं पढ़ता है, तो उसके ऊपर वाजिब ये है कि समय के बाद कज़ा की नियत से नमाज आयात को पढ़े। तो यह सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण की बात हुई। अब उसके अलावा जो दूसरे कारण होते हैं नमाज आयात के वाजिब होने के, जैसे भूकंप का आना या काली आंधी का चलना या पीली आंधी का चलना, अगर इनसे डर जाए तो भूकंप इसमें शामिल नहीं डरने में, तो इनका समय क्या है? तो यहाँ पर हमारे फुकहा ये कहते हैं कि इसका कोई विशेष समय निश्चित नहीं है, बल्कि जब भी भूकंप आता है और ये चीज़ें होती हैं तो उसी समय नमाज आयात वाजिब हो जाती है, और जब भी इस नियत से कि भूकंप की नियत से नमाज आयात पढ़ रहा है नमाज आयात पढ़ी जाएगी तब तक वो नमाज आयात अदा होगी, कभी भी कज़ा नहीं हो सकती है। यानी इसका मतलब ये हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि अगर किसी के 15 साल की आयु में भूकंप के कारण उसके ऊपर नमाज आयात वाजिब होती है और वो 77वें साल में नमाज आयात पढ़ना चाहता है उस वाली को, तो उस साल में भी वो अदा ही की नियत से पढ़ेगा, उसके ऊपर ये नमाज आयात कज़ा नहीं होगी। उसके बाद इसमें कुछ अहकाम हैं नमाज आयात से संबंधित जो हम आपके सामने बयान कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ कि जो कारण नमाज आयात का बन रहा है, जैसे सूरज ग्रहण का होना, चांद ग्रहण का होना या जलजले का होना, इस प्रकार की चीज़ों का, ये जिस शहर और जिस क्षेत्र में हो रहा है उसी क्षेत्र के लोगों को, उसी शहर के लोगों को वाजिब है ये है कि नमाज आयात पढ़ें। अगर मान लीजिए दिल्ली में सूरज ग्रहण होता है और लखनऊ के रहने वाले उस सूरज ग्रहण को नहीं देखते हैं, बल्कि सूरज ग्रहण तो ऐसी चीज़ है जो सब जगह दिखाई जाती है, ये अगर मिसाल इस प्रकार दूँ तो बेहतर रहेगा। अगर दिल्ली में जलजला आता है और लखनऊ के रहने वाले उस जलजले को महसूस नहीं करते हैं, तो दिल्ली और वो क्षेत्र जहाँ उस जलजले को महसूस किया जाता है वहीं पर केवल नमाज आयात वाजिब होगी, उसके दूसरे क्षेत्रों पर नमाज आयात वाजिब नहीं होगी। और उसके बाद जो दूसरा मसला है वो ये है कि जैसे हमने आपको बताया कि नमाज आयात के दो तरीके हैं, एक विस्तृत तरीका है जिसमें हर रकात में सूरह हम्द और दूसरा सूरह पूरा पूरा पढ़ा जाता था हर रुकू से पहले, और एक तरीका ये संक्षिप्त तरीका जो हमने आपको सामने मिसाल देके कुलवल्ला वाली बयान की थी। अब अगर कोई इंसान इस प्रकार पढ़ना चाहे कि दोनों तरीकों को आपस में मिलाए, तो क्या इस प्रकार पढ़ सकता है कि नहीं पढ़ सकता है? तो हमारे फुकहा यहाँ पर इजाज़त देते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान पहली रकत में हर रुकू से पहले हम्द और सूरह पूरा पूरा पढ़े और पहली रकत समाप्त करे, और दूसरी रकत में एक अलहमद पढ़े और दूसरे सूरह को 5 भागों में बांट के हर रुकू से पहले पढ़े। ये कर सकता है, और इसके जस्ट उलट भी कर सकता है, यानी पहली रकत में एक हम्द और सूरह को 5 भागों में बांटा जाए और दूसरी रकत में हर रुकू से पहले हम्द और सूरह को दोनों को पूरा पूरा पढ़ा जाए। तो ये वो चीज़ें हुई जो अहकाम से संबंधित थी इसके। उसके बाद इसमें नमाज़ आयात जिस समय इंसान पढ़ रहा है तो कुछ चीज़ मुस्तहब हैं। जिस समय नमाज़ आयात इंसान पढ़ने के लिए खड़ा हुआ है, मुस्तहब ये है कि दूसरे, चौथे, छठे, आठवें और दसवें रुकू से पहले, यानी जब ये रुकू पढ़ हो तो उनसे पहले कुनूत पढ़ा जाए, ये नमाज़ आयात में मुस्तहब है। और अगर कोई इंसान ऐसा नहीं करता है, यानी दूसरे, चौथे, छठे, आठवें और दसवें के बाद पहले कुनूत नहीं पढ़ता है, तो अगर केवल 10वें रुकू से पहले कुनूत पढ़ ले तो यही काफ़ी होगा और जो है ये उसके लिए किफ़ायत करेगा। और उसके बाद जो हमने बताया कि एक जब नमाज हयात हम पढ़ रहे हैं तो नमाज आयात में 10 रुकू होंगे, तो ये हर हर रुकू यानी 10 के 10ों रुकू नमाज आयात के रुकन हैं। अगर इनमें से किसी एक रुकू को भी जानबूझ के या भूले से कम या ज़्यादा कर दिया जाता है तो उसकी नमाज बातिल होगी और उसको दोबारा नमाज पढ़नी होगी। उसके बाद नमाज आयात जो कि हमने बताया कि वाजिब है, और चूँकि वाजिब नमाज है इसलिए इसको जमात से भी पढ़ा जा सकता है, और अगर नमाज आयात को जमात से पढ़ा जा रहा है तो ऐसी स्थिति में हम्द और सूरह को मामूम नहीं पढ़ेगा, यानी जो पीछे खड़े होकर लोग पढ़ रहे हैं उनको नहीं पढ़ना है। उसके अलावा बाकी तमाम जिक्रों को दूसरी नमाजों की तरह पढ़ना होगा, और ये इसका हुक्म है, और इसके ऊपर ये इस प्रकार अंजाम दिया जाएगा। उसके बाद एक और चीज़ होती है, कभी अगर कभी ऐसा हो जाए कि एक ही समय में कोई एक कारण कई मरतें हो जाए, मसलन जलजला आया एक के बाद एक कई बार आ गया, तो क्या ये एक नमाज़ पढ़ी जाएगी या हर जलजले पर एक नमाज़ पढ़ी जाएगी? तो हमारे फुकहा ये कहते हैं कि अगर एक समय में कई जलजले आते हैं तो हर जलजले के बदले में, हर भूकंप के बदले में एक नमाज आयात उसके ऊपर वाजिब होगी। ऐसा नहीं कि सारे भूकंपों को, सारे जलजलों को मिला के एक नमाज आयात पढ़ ली जाए, ना, बल्कि जितने भूकंप आए हैं उतने ही नमाज आयात पढ़नी होगी। और इसी तरह अगर ऐसा हो जाए कि मसलन सूर्य ग्रहण भी था और भूकंप भी आ गया, तो जो जो कारण बनते हैं उनके लिए अलग अलग से नमाज आयात वाजिब होगी और हर एक को अलग अलग पढ़ना होगा। उसके बाद इसमें एक ये है कि अगर कभी इंसान नमाज आयात पढ़ने खड़ा हो गया, पढ़ लिया, उसने उसको बाद में पता चला उसने जो नमाज आयात पढ़ी थी वो बातिल थी, तो अगर उसको पता रहता है नमाज आयात पढ़ी थी और वो बातिल थी तो उसको दोबारा नमाज आयात पढ़नी होगी। अगर समय निकल गया है तो उसकी कज़ा पढ़नी होगी। इसके बाद कभी अगर ऐसा हो जाए कि इंसान को पता ही ना चले कि सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण हुआ था या नहीं हुआ था, कुछ समय जब निकल जाता है उसके बाद उसको समझ में आता है कि सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण हुआ था, तो अब उसके ऊपर क्या वाजिब है? तो हमारे फुकहा यहाँ पर ये कहते हैं कि अगर वो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पूरा का पूरा हुआ था तो उसके ऊपर वाजिब है कि उस नमाज की कज़ा करे, और अगर पूरा नहीं हुआ था तो उसके ऊपर कज़ा वाजिब नहीं है। इसके बाद कभी अगर ऐसी स्थिति पेश आ जाए कि जिस समय मान लिए सूर्य ग्रहण हुआ है वो नमाज यौमिया के साथ साथ हो जाए, मतलब मान लीजिए जोहर की नमाज का समय है उसी समय सूर्य ग्रहण भी हुआ है, तो इनमें से किसको पहले पढ़ा जाएगा? नमाज यानी जोहर की नमाज़ को पहले पढ़ा जाएगा, जोहर और असर की नमाज़ को पहले पढ़ा जाएगा, या सूर नमाज आयात को पहले पढ़ा जाएगा? तो यहाँ पर हमारे फुकहा कहते हैं अगर दोनों के समय ज़्यादा है, दोनों का समय वसी है, तो किसी भी नमाज को ही पहले पढ़ सकता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन अगर किसी एक नमाज का समय कम है, मान लिया जोहर की और असर की नमाज का समय कम है और नमाज आयात का समय अधिक है, तो उसके ऊपर वाजिब यह है कि पहले नमाज यौमिया यानी जोहर और असर की नमाज़ पढ़े, उसके बाद नमाज आयात पढ़े। अगर इसके उलट हो जाए, नमाज आयात का समय कम हो, उनका समय ज़्यादा है, तो नमाज आयात को पहले पढ़े, जोहर असर की नमाज़ को बाद में पढ़े। अब अगर कभी ऐसा हो जाए कि हमारे जोहर असर की नमाज़ का भी समय कम है, नमाज आयात का भी समय कम है, यानी किसी एक को पढ़ सकता है उसके समय के अंदर, तो किसको पढ़े? तो यहाँ पर हमारे फुकहा कहते हैं कि अगर दोनों का समय कम है तो इंसान के ऊपर वाजिब यह है कि नमाज यौमिया को पहले पढ़े और उसके बाद नमाज आयात को पढ़े। अगर उसके पास समय रह जाता है तो अदा की नियत से, अगर समय समाप्त हो जाता है तो कज़ा की नियत से नमाज आयात उसके ऊपर वाजिब होगी। उसके बाद एक अंतिम मसला नमाज आया से संबंधित आगे सामने बयान कर दूँ और इस अध्याय को यहीं पर हम बंद कर देंगे। वो ये है कि अगर कोई महिला अपने मासिक धर्म में हो या निफास का खून देख रही हो और उस समय नमाज आयात वाजिब हो जाए, मसलन उस समय भूकंप आ जाए या उस समय सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण हो जाए, तो इस महिला के ऊपर नमाज आयात वाजिब होगी या नहीं वाजिब होगी। तो हमारे फुकहा यहाँ पर कहते हैं कि अगर वो महिला हैज़ की हालत में यानी मासिक धर्म में थी या निफास का खून देख रही थी तो उसके ऊपर नमाज आयात वाजिब नहीं है, और उस जब इस खून से पाक हो जाती है, पवित्र हो जाती है, तो उसके बाद उसके ऊपर उसकी कज़ा भी वाजिब नहीं है। तो ये वो मसले थे जो नमाज आया से संबंधित है, जिनको हमने आपके सामने बयान किया। इसके बाद भी हम नमाज से संबंधित कुछ और मसले आपके सामने लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अपने अगली कार्यक्रम तक मैं आप सभी को ईश्वर के सुपुर्द करता हूँ। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।